यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि बुजुर्ग से दानवों के बारे में कोई जानकारी ना मिलने पर वानर वापस लौट आया। जब सांचांग ने जानकारी मांगी तो वानर के पास उसका कोई जवाब नहीं था। तब शूकर जाकर दानवों के बारे में ज्यादा जानकारी लेने पहुंचा। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ।
भिक्षु रेतात्मा ने हंसते हुए कहा, गुरुदेव, चूंकि मेरे बड़े भाई के अंदर अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। कृपया घोड़े पर सवार हो जाइए ताकि हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं। वानर की अद्भुत शक्तियों के बारे में हुई चर्चा को सुनने के बाद सांचांग को विवश होकर घोड़े पर सवार होना पड़ा और दिल कड़ा करके अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। जब वे लोग आगे बढ़ गए तो बुजुर्ग आदमी गायब हो गया। भिक्षु रेतात्मा ने कहा, शायद वह खुद भी एक प्रेतात्मा होगा जो जानबूझकर अपनी चालबाजी और धमकियों से हमें डराने आया था। वानर बोला,
इत्मीनान रखो, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ।
वाह रे वानर राज, वह उछल कर एक ऊंचे शिखर पर जा पहुंचा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई पर बुजुर्ग का कोई नामो निशान कहीं नहीं था। जब वह अचानक पीछे मुड़ा तो आसमान में उसे एक झिलमिलाती रंगीन रोशनी दिखाई दी। अपनी मेघयान में सवार होकर जब वह और ऊपर पहुंच गया तो उसने महान श्वेत शुक्र नक्षत्र दिखाई दिया। उसके पास जाकर और उसका हाथ थाम कर वानर उसे व्यक्तिगत नाम से ही बुलाता हुआ बोला,
ली छांग कंग, अरे ओ शैतान की औलाद, अगर तुम्हें कुछ कहना ही था तो मेरे मुंह के सामने आके क्यों नहीं कहा? जंगल के बुजुर्ग आदमी का स्वांग रचकर मुझे बेवकूफ क्यों बनाया?
श्वेत शुक्र नक्षत्र ने तुरंत वानर राज का अभिवादन किया और बोला, महान मनीषी, आपकी सेवा में देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। उन दानव सरदारों के पास सचमुच अद्भुत तिलिस्मी शक्तियाँ और अपूर्व शक्तियों का खजाना मौजूद है। अपनी रूपांतरण क्षमता और चतुराई से आप जैसे तैसे उन्हें हरा जरूर सकते हैं, लेकिन आपने उन्हें नाचीज समझा तो यह पर्वत पार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह सब सुनकर वानर ने कहा,
मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ, सचमुच बहुत आभारी हूँ। यह पर्वत पार करना बहुत मुश्किल काम है। आशा है तुम देवलोक में जाकर जेठ सम्राट को सूचित कर दोगे ताकि वे मेरी मदद के लिए कुछ दैवी सैनिक यहाँ भेज सके।
महान श्वेत शुक्र नक्षत्र ने कहा, ठीक है, तुम्हारा संदेश प्राप्त होते ही 100,000 दैवी सैनिक तुम्हारी इच्छा के लिए मदद के लिए पहुँच जाएंगे। तब देव वानर ने श्वेत शुक्र नक्षत्र से विदा ली और अपना मेघयान नीचे उतार कर सांचांग के पास जा पहुंचा और बोला,
जिस बुजुर्ग आदमी को हमने अभी देखा था वह दरअसल महान श्वेत शुक्र नक्षत्र था जो हमें एक संदेश देने आया था।
सांचांग ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, शिष्यवर, जल्दी जाओ और उसके पास पहुंचकर ये पूछो कि क्या कोई ऐसा दूसरा रास्ता भी है जो इस पर्वत से अलग आगे जाता हो।
वानर ने जवाब दिया, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। इस पर्वत की परिधि 250 कोस है। भगवान ही जानता है कि दूसरा रास्ता पकड़ने में कितना वक्त लगेगा। इस रास्ते के सिवाय आगे जाने वाला कोई और रास्ता है ही नहीं।
यह सुनकर सांचांग अपने आंसू नहीं रोक पाया। वह बोला,
शिष्यवर, अगर यह पर्वत पार करना इतना मुश्किल है तो हम भगवान बुद्ध की पूजा कैसे कर पाएंगे?
सांचांग के आंसू देखकर वानर बोलने लगा,
रोइए मत गुरुदेव, आंसू ना बहाइए। अगर आप रोएंगे तो बुजदिल कहलाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वह बुजुर्ग बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है। मुख्य बात तो यह है कि हमें सावधानी से काम लेना होगा। जैसा कि कहावत है, पहले से सचेत होना पहले से हथियार बंद होने के समान होता है। घोड़े से उतर जाइए और कुछ देर के लिए यहाँ बैठ जाइए।
शुकर ने पूछा,
अब तुम क्या चाहते हो?
वानर ने जवाब दिया,
कुछ खास नहीं, तुम यहीं ठहरो और गुरुदेव की सावधानी से देखभाल करो। भिक्षु रितात्मा को चाहिए कि वह हमारे सामान और घोड़े पर अच्छी तरह से नजर रखे। मैं पहाड़ पर जाकर जांच पड़ताल करूंगा और पता लगाऊंगा कि पूरे क्षेत्र में कितने दानव मौजूद हैं। उनमें से एक को पकड़कर उससे पूरी जानकारी हासिल कर लूंगा और सभी दानवों की नाम सूची बनवा लूंगा। मैं उनमें से हर एक दानव को, वह चाहे बूढ़ा हो या जवान, बाहर निकाल दूंगा और उनसे कहूंगा कि कंदरा का दरवाजा बंद कर दें और हमारे रास्ते में रुकावट ना डालें। तब मैं गुरुदेव से अनुरोध कर सकूंगा कि वे इत्मीनान से चुपचाप पर्वत को पार कर लें। इस तरह लोगों को मेरी विलक्षण शक्तियों का पता लग सकेगा।
भिक्षु आत्मा ने कहा, होशियारी से काम लेना भैया, पूरी सावधानी से काम लेना। वानर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
मुझे यह सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार मैं एक रास्ता जरूर निकाल लूंगा, चाहे मेरे सामने पूर्वी महासागर ही क्यों ना हो। मैं तो पहाड़ को तोड़कर अपना रास्ता बना लूंगा, चाहे वह लोहे के खोल में बंद चांदी का पहाड़ ही क्यों ना हो।
महान मनीषी सीटी बजाता हुआ कलाबाजी मेघयान में बैठकर सीधा शिखर पहुंच गया। लताओं और बेलों को पकड़कर उसने पर्वत का सर्वेक्षण किया। चारों तरफ सूनापन छाया हुआ था और खामोशी थी। उसके मुंह से अचानक ही ये शब्द निकले,
मुझसे गलती हो गई, सच में मुझसे गलती हो गई। मुझे उस बुजुर्ग महान श्वेत शुक्र नक्षत्र को जाने नहीं देना चाहिए था। वह मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तो कोई प्रेतात्मा नहीं है। अगर होगा भी तो वह बाहर हवा में बर्छी व डंडा उठाए उछल कूद मचा रहा होगा या रण कौशल का अभ्यास कर रहा होगा। क्या वजह है कि यहाँ कोई भी दानव नजर नहीं आ रहा?
वह यह सब हैरान होकर सोच ही रहा था कि अचानक उसे घंटी और मंजीरे की आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो उसे एक बाल दानव दिखाई दिया। उसके कंधे पर एक झंडा लटका हुआ था जिस पर लिखा हुआ था आदेशानुसार। वह कमर में एक घंटी बांधे हुए था और हाथों से मंजीरा बजा रहा था। वह उत्तर से आ रहा था और दक्षिण की तरफ जा रहा था। पास से देखने पर उसकी लंबाई कोई 12 हाथ थी। वानर ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा,
यह कोई संदेश वाहक लगता है जो शायद कोई संदेश या सूचना पहुंचाने जा रहा है। मैं चुपचाप जाकर सुनता हूँ कि वह क्या कह रहा है।
अब क्या था, महान मनीषी ने ताली बजाई, मंत्र पढ़ा, अपने शरीर को झकझोरा और एक मक्खी का रूप धारण कर लिया जो धीमे से दानव की टोपी पर बैठ गई और सिर झुकाकर उसकी बातें सुनने लगी। बाल दानव मुख्य मार्ग पर घंटी और मंजीरा बजाता हुआ अपने आप से कह रहा था,
पर्वत पर गश्त लगाने वाले, हम सब प्रहरियों को नवदीक्षित सोनुखुन से सावधान रहना चाहिए। वह मक्खी का रूप भी धर सकता है।
वानर यह सुनकर दंग रह गया। इस बाल दानव ने मुझे जरूर देख लिया होगा, वरना यह मेरा नाम क्यों पुकार रहा है? और उसे कैसे पता चल गया कि मैं मक्खी का रूप भी धर चुका हूँ? वानर यह सोच रहा था, पर बाल दानव ने तो उसे देखा ही नहीं था। दरअसल दानव ने ही किसी कारणवश उसे यह हिदायत दी थी जिसे वह बिना सोचे समझे तोते की तरह रटता जा रहा था। वानर को यह सब मालूम नहीं था। उसने सोचा, हो ना हो इस दानव ने मुझे जरूर देख लिया होगा। वह अपना दंड निकाल कर दानव पर चोट करने ही वाला था कि अचानक रुक गया। उसने सोचा,
मुझे याद है जब शुकर ने श्वेत शुक्र नक्षत्र से सवाल पूछा था तो श्वेत शुक्र नक्षत्र ने उसे बताया था कि यहाँ 3 दानव हैं और 47,000 या 48,000 ऐसे ही छोटे दानव हैं। अगर ऐसे ही दसियों हजार छोटे दानव और भी हों तो मेरे लिए कोई परेशानी नहीं होगी, पर मैं नहीं जानता कि उन तीन दानवों की शक्ति कितनी बड़ी है। पहले मैं इसी से पूछताछ करता हूँ, इससे निपटने के लिए तो अभी समय है।
तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।